ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज के इस कॉन्फ्रेंस के मॉर्निंग सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आज का, जैसे हमें सिस्टर ने बताया भी, आज का दिन हमारे लिए बहुत बहुत यूजफुल है, बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज हमारे बीच में है ब्रह्मा कुमारी की एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी जयंती दीदी जी। हम सभी जोरदार तालियों से दीदी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दीदी एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत अपनी टीनेज से की और तब से लेकर अब तक संसार के 100 से अधिक देशों में दीदी ने भ्रमण करके वहां के लोगों को इस भारतीय आध्यात्मिक विरासत के साथ में जोड़ा है। आपने मिलियंस लाइव्स को आज तक संसार भर में इम्पैक्ट किया है। वो लोग मेडिटेशन करते हैं और भारत में आकर के इस कैंपस में आकर अपनी रिट्रीट्स करते हैं। दीदी ब्रह्मा कुमारी की तरफ से यूनाइटेड नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव हैं लास्ट 1980 से, और आप वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स के एडवाइजर भी हैं, वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ फेथ्स के मेंबर और इंटरनेशनल इंटरफेथ काउंसिल के एडवाइजर, और वैश्विक स्तर पर आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप एक बहुत अच्छे ऑथर भी हैं, आपके मार्गदर्शन में कई बुक्स लिखी गई हैं। और जैसा आज का टॉपिक है द साइलेंट इम्पैक्ट ऑफ एजुकेटर्स, तो दीदी एक ऐसे एजुकेटर हैं जिनकी उपस्थिति मात्र ही हम सबको बहुत ऊंची वाइब्रेशंस का अनुभव करा रही हैं। उनके जीवन की सादगी, सौम्यता, पवित्रता हम सबके लिए सीखने योग्य है। तो दीदी हम आपसे अनुग्रह करेंगे कि आप हमें इस टॉपिक पर एनलाइटन करें, एंड देन फिर हम आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछना चाहेंगे।
ओम शांति। रिस्पेक्टेड गेस्ट्स, डेलीगेट्स, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बहुत सुंदर टॉपिक रखी है आज के सवेरे के टाइम पर। जब लंदन में अपना सेंटर शुरू हुआ 1971, तो उस समय मेरा ही भाग्य था जो मैं वहां निमित्त रही। परंतु 1974 में दादी जानकी वहां पर आए और वो फिर 40 वर्ष वहां सेवाएं उनके द्वारा चलती रही, और अब तक भी उसकी छत्र छाया के नीचे ही हम सब कुछ कर रहे। कौन है जो दादी जानकी को कब मिले थे? कोई मिले थे? कुछ तो उसकी पर्सनालिटी ही ऐसी थी। जो मिले हैं वो मुझे आप लोगों को भी बता सकते कि उसके हाजिरी में ही बहुत कुछ सीखने को मिला। तो प्रैक्टिकल जीवन का एक्सपीरियंस है कि कोई ऐसी व्यक्ति होते हैं जिनके जीवन ही अनेकों के लिए शिक्षक भी होती, परंतु साथ साथ उनका बहुत उज्जवल भविष्य भी बनता और उनके जीवन भी बहुत श्रेष्ठ बनती। तो 74 में जैसे ही दादी ने वहां पर कार्यक्रम में अपना सहयोग दिया, वैसे वो आई थी 2 सप्ताह के लिए, परंतु वो एक्सटेंड होता गया। तो उस समय मैंने देखा कि कई लोग जो आ रहे थे वो टीचर्स थे, तो मुझे इंटरेस्ट लगा उसमें। उस समय तो ज्यादा ही विदेशी थे लोकल ब्रिटिश पीपल, फिर जैसे भारत के पॉपुलेशन वहां पहुंचती गई तो आजकल तो बहुत सारे भारतवासी, चाहे भारत के चाहे अफ्रीका से, वहां पर मौजूद है। परंतु उस समय टोटल ही क्लास करीबन आई थिंक 90% ब्रिटिश थे, 10% भारत के थे। भारत की पॉपुलेशन उस समय वहां इतनी ज्यादा नहीं थी। तो मैंने उनसे बातचीत की, जो 4 टीचर्स थे, तो उन्होंने बताया। मेरा इंटरेस्ट था कि सब और प्रोफेशंस में से इतने सारे टीचर्स कैसे आ गए, बिग परसेंटेज। तो उन्होंने बताया, एक एक की अपनी कहानी थी, परंतु जनरली स्पीकिंग वो ये बताते थे कि बहुत तनाव है, जो उस समय स्टूडेंट्स का व्यवहार था अलग ही प्रकार से हो चुका था। अभी तो मैं समझती हूँ कि संसार की हालत किस तरफ जा रही है वो तो आप देख ही रहे हैं, तो आजकल तो और ही मुश्किलें होंगी, परंतु उस समय भी मुझे बहुत कॉन्ट्रास्ट लगा कि जब 60s में मैं स्टूडेंट थी या यूनिवर्सिटी शुरू किया था तो उस समय बहुत रिस्पेक्ट रहता था एजुकेटर्स के लिए, टीचर्स के लिए। क्यों? क्योंकि हम समझते थे कि उनके द्वारा हमें बहुत कुछ प्राप्ति होंगी और हमारा भविष्य एजुकेशन पर ही आधारित है। तो जब मैंने उनके द्वारा सुना कि इतना तनाव है, जो एक उसमें से टीचर ने बताया, वो सेकेंडरी स्कूल में काम करता था, ग्रामर स्कूल जिसको कहते थे उन दिनों में, जूनियर स्कूल अलग फिर सेकेंडरी स्कूल, तो कहता था कि मैं क्यों मेडिटेशन सीखने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं और मेरे फ्रेंड्स जैसे ही फ्राइडे शाम को स्कूल बंद होता था हम लोग पब में जाते और इतना शराब पीते जो हम लोग बिल्कुल होश में ही न रहे। क्यों? क्योंकि हमको मालूम था कि वीकेंड भी है और हम इस तनाव से मुक्त होने चाहते हैं, तो शराब के जरिए हम सोचते थे कि जो पास्ट का सप्ताह चला है हमें उसको पूरा भुला लेना है, हम उसको याद करने ही नहीं चाहते, और फिर मंडे तक थोड़ा रिवाइव होकर के फिर हम वापस काम पर जाते। फिर दूसरे ने कहा कि जिस लक्ष्य से मैंने अपना ये जीवन बनाने का सोचा वो मुझे लगता है कि वो लक्ष्य तो बहुत दूर चला गया और अभी तो वे फायर फाइटिंग। तो लक्ष्य क्या था कि जो यंग पीपल है उन्हों की हम ऐसे पालना देवे जो उनका जीवन बहुत सुंदर बन जाए, और हम ये चाहते थे कि हम उनों के अंदर कुछ वैल्यूज इंस्टिल करें, वो बीज डालें जिससे उनों की जीवन आगे के लिए बहुत अच्छी रहे, परंतु वो हमको लगता है कि वो हमारा लक्ष्य नहीं पूरा हो रहा। तो हम सोचते हैं कि क्या इतना सारा हमने स्टडी किया, क्वालिफिकेशंस ली और जिस लक्ष्य से हम शुरू किया ये कार्य वो नहीं हो पा रहा, तो हम सोचते हैं कि हमारा भविष्य क्या। तो इस प्रकार की पर्सनल कहानियां कईयों को सुनने को मिली और जैसे समय बीतता गया और भी अनेक टीचर्स आते गए और भी प्रोफेशंस वाले आते, परंतु खास करके मैं देखती थी कि टीचर्स का उस समय बहुत इंटरेस्ट रहता था मेडिटेशन में अपने खुद के लिए। कुछ समय के बाद उनमें से एक जो टीचर बहन थी उसने एक पुस्तक लिखा जिसमें उसने टीचर्स के लिए खास लिखा कि अपनी खुद की स्थिति से किस तरह से औरों के ऊपर प्रभाव पड़ता, जो आज की टॉपिक है। तो उसने बताया कि उस पुस्तक में कि जब मैंने टीचिंग का कोर्स शुरू किया, करियर शुरू किया, तो मुझे भी बहुत बहुत ड्रीम्स थे कि इससे अनेकों के जीवन का बहुत प्राप्ति होंगी, परंतु मैं खुद ही नहीं थी, मैं खुद ही नर्वस थी और मुझे स्टडी के हिसाब से लेसन की तैयारी करने तो ठीक है, परंतु मुझे आंतरिक स्थिति की कैसे मुझे अपनी तैयारी करनी है वो मुझे नहीं मालूम था। और जैसे मैं मेडिटेशन सीखती गई तो मैंने देखा कि जितना जितना मैंने अपने माइंड को स्टेबल बनाया और फिर उनों का व्यवहार किसी भी तरह से था, मैं उन्हों को फिर भी रिस्पेक्ट से बात करती थी। वैसे भी मेरा स्वभाव नहीं है कि मैं जोश करूं, परंतु इरिटेशन तो कई बार पहले आती ही थी, परंतु मेडिटेशन के द्वारा जब मैंने अपने इमोशंस को शांत किया और मैंने स्थिति को शांत में बनाया, तो मैंने देखा कि फिर भी मैं उन्हों को उस तरह से जब देखती थी कि ये बिल्कुल शुद्ध आत्मा है और यहाँ ब्रुकटी के बीच में वो चमकता हुआ सितारा है, मैं उन्हों को उस दृष्टि से देखती थी तो वो जैसे कि काम हो जाते थे। जो उनका हाइपर पहले एक्टिविटी चलती थी, स्थिर बैठ ही नहीं पाते थे, परंतु उनको इस तरह से दृष्टि देने से वो काम हो जाते थे और फिर शांति से बैठ भी सकते थे। नहीं तो 5 मिनट के लिए भी उनका हिलना जुलना बंद नहीं होता था। फिर धीरे धीरे उनों के अंदर ये भी आता गया और मैंने उनको कुछ शब्दों में ज्ञान का सुनाने का लक्ष्य नहीं रखा, क्योंकि दूसरे धर्म वाले हैं, किस धर्म के हैं, क्या मान्यताएं हैं, तो वो तो हम लोगों को मना होती थी कि आप कुछ इस तरह से रिलीजन की बातें बिल्कुल मत करना। तो मैं शब्दों में नहीं कहती थी कुछ, परंतु मैंने देखा जैसे मेरी अंदर का परिवर्तन होता रहा, उस आधार पर उनों का भी बहुत अच्छी तरह से वो रिजल्ट मुझे मिलती रही। तो मैं ये सोचती थी कि लेसन को तैयार करना है वो तो ठीक है, परंतु उससे ज्यादा मुझे अपने अंदर की तैयारी करनी है और उस तैयारी के आधार पर फिर मैं क्लासरूम में जाऊं। और जिस दिन मैं थोड़ा देर से उठती और मुझे वो चांस नहीं रहता अपने अंदर की अच्छी तरह से तैयारी करने का, तो फिर तो मैं देखती हूँ कि उनका जो फोकस है, कंसंट्रेशन तो वैसे भी उनके लिए कठिन था, परंतु मेरे वाइब्रेशंस के कारण उनके वाइब्रेशंस और साथ साथ उनकी बॉडी लैंग्वेज में भी बहुत हलचल नजर आती थी। तो ये मैंने प्रैक्टिकल देखा कि किस तरह से मेडिटेशन में न केवल मेरे को फायदा होता, परंतु वो सारे जो स्टूडेंट्स हैं और मोस्टली वो टीनेजर्स के साथ उसका कार्य चलता था, सेकेंडरी स्कूल, ग्रामर स्कूल, तो उसमें ही वो अपना अनुभव ये बताया। और एक स्कूल था जहाँ पर कुछ वर्षों तक मुझे हर वर्ष बुलाते थे कि आकर स्पिरिचुअलिटी पर कुछ सुनाओ, क्योंकि समर टर्म में वो उनका कुछ ऐसे टाइम बना हुआ था जिसमें उन्होंने टीचर के ऊपर रखा था कि वॉट एवर टॉपिक यू चूज। तो क्योंकि इम्तिहान के दिन पूरे होते थे, फिर उसके बाद में कुछ समय लगता था उसके लिए, तो वो जो टीचर था उस समय, मैं समझती 5-6 वर्षों तक हर वर्ष मैं उनके पास जाती रही। वो भी टीनेजर्स थे और हर साल नया ग्रुप होता था, तो जिस समय अंदर कमरे में आते थे, आपस में बातें करना, आपस में बहुत लेन देन करना, इस तरह से चलता था। फिर मुश्किल से वो बैठते थे, परंतु शांति से नहीं बैठते थे। तो मैं उनको कहती थी, लेट्स रिलैक्स फॉर 1 मिनट, बस आप अपने शरीर को भी रिलैक्स कर लो, मन को भी रिलैक्स करो, और फिर आप देखो कि आपके अंदर की शांति आपको मैं। तो ये 1-2 मिनट का एक्सपेरिमेंट के नाम पर ऐसे ही शुरू करते थे और फिर थोड़ी शांति हो जाती थी, तो भी उनका हलचल 2 मिनट के बाद तो फिर शुरू हो जा रहा था। परंतु इंटरैक्टिव उसको करने से मैंने देखा कि उनका इंटरेस्ट ना रहता था। अब बस 15-20 मिनट भाषण करो तो उनकी कैपेसिटी ही नहीं थी कि इतना फोकस से सुने। यहाँ वहाँ देखने लगते थे, एक दो को नोट्स भेजते रहते थे, परंतु उनको एंगेज करो इंटरेक्शन में तो कुछ फर्क पड़ता था। परंतु ये रियलिटी है, टीचर की जो इंटरनल स्थिति है उस आधार पर ही अपने क्लासरूम को वो पहले तो मैनेज करें। यहाँ का मुझे मालूम नहीं है कि क्लासरूम्स का क्या वातावरण है। मैं समझती हूँ मेरे जमाने में जब मैं बहुत छोटी थी और उस समय तो फिर 7 साल के बाद हम विदेश चले गए, परंतु तब तक तो सब बहुत ऑर्डरली चलता था। आजकल क्या है, ऐसे है या ज्यादा हलचल होती? कौन समझता है कि आजकल ज्यादा ही कुछ अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि यहाँ पर भी एक विशेष टर्निंग पॉइंट आई भारत में जो मैंने नोटिस किया। पहले तो जो यहाँ का जो नेशनल चैनल है वही चलता था टेलीविजन पर, परंतु फिर वो घड़ी आई जबकि उसको भी खोल दिया और अमेरिकन प्रोग्राम्स चलने लगे। और एक प्रोग्राम, ये 80s अर्ली 90s की बात होंगी, एक प्रोग्राम चलता था सोप ऑपरा डैलस, कईयों को याद होगा या नहीं। तो डैलस में वो सारा कहानी दिखाती है हर समय, टेक्सास की, डैलस की कहानी। तो बाय चांस मैं खड़ी थी पांडव भवन, जो यहाँ का अपना फर्स्ट आश्रम है, तब तक ज्ञान सरोवर नहीं बना था। तो मैं बाहर खड़ी थी, किसका इंतजार कर रही थी, तो एक जवान भाई था। तो उसके कनेक्शन पेरेंट्स को मैं जानती थी, तो मैंने कॉन्वर्सेशन शुरू की उसके साथ। तो वहाँ ही किस हिसाब से आबू में आया था, शायद पेरेंट्स लेके आए होंगे, आई डोंट नो। उसकी आयु 18-19 की होंगी। तो मैंने पूछा कि तुम्हारा जीवन का लक्ष्य क्या है, तो उसने बताया कि जिस तरह से डैलस में लाइफस्टाइल होती है, मैं चाहता हूं कि मेरी लाइफस्टाइल ऐसे रहे। मुझे थोड़ा सरप्राइज लगा कि भारत में जो नौजवान है, उस समय की बात अभी तो मुझे नहीं मालूम, परंतु क्योंकि आजकल तो मैं जो नौजवानों से मिलती हूँ, दे ऑन द स्पिरिचुअल पाथ, चाहे आईटी के वाले हो चाहे कोई भी प्रोफेशन वाले हो, तो उन्हों का तो दूसरी भाई यंग जनरेशन है, उन्हों का यदि कोई सर्वे करे और पूछे कि आपका जीवन का लक्ष्य क्या है, इट माइट बी सरप्राइजिंग। तो मैंने उस समय सोचा कि ये मैं प्रैक्टिकल देख रही हूँ, जिसको कहते हैं संघ का रंग। तो जो संघ है न सिर्फ फिजिकल कंपनी की बात है, परंतु जो हम देखते हैं सुनते हैं उसके भी संघ का बहुत ज़बरदस्त असर होता, ज़्यादा ही। क्योंकि आप किसी से पर्सनल मिलो, कब कब मिलेंगे, थोड़े समय के लिए मिलेंगे या बड़े संगठन में मिलेंगे, तो वो थोड़ा इम्पैक्ट डाइल्यूट होता। परंतु कोई टेलीविजन देखता और हर सप्ताह वही प्रोग्राम, उसी प्रकार की बातें, तो उसका धीरे धीरे इम्पैक्ट इतना होता जाता जो हम कहेंगे भी नहीं कि इस चीज़ का इम्पैक्ट है। वो समझते हैं कि ये तो मेरा नेचुरल स्वाभाविक स्थिति है। तो टेलीविजन का प्रभाव, और उसमें भी खास करके अमेरिकन सीरियल्स का जो चलता था, आजकल शायद वो अभी तो यहाँ भी चैनल्स खूब सारे बन गए, उस समय इतना नहीं था। तो पहले टीचर को अपने जीवन का लक्ष्य क्लियर हो कि मुझे अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, ऊंचा बनाना है, वैल्यूज के आधार पर अपने जीवन को चलाना है। तो मुझे लगता है कि पहले तो खुद की सेवा होती, और जो नहीं तो अनेक प्रकार के मन में कुछ नेगेटिव बातें आती है, कुछ व्यर्थ बातें आती है, उनों के ऊपर हम जीत प्राप्त करते, ताकि हमारे मन की भावनाएं श्रेष्ठ हो, ऊंची हो, अनेक आत्माओं के कल्याण की भावना हो। तो उस स्थिति से जो आपका इम्पैक्ट रहेगा, कोई भी एज वाले ग्रुप हो, वो छोटे बच्चे हो, हायर एजुकेशन वाले हो, कोई भी हो, परंतु आपके वाइब्रेशंस का अवश्य ही उनके ऊपर प्रभाव पड़ता ही है और उसमें आप अपने वैल्यू को जिस खरी जानते हैं कि मेरे जीवन की वैल्यू क्या है, तो फिर आप उनों के अंदर भी वो वैल्यू दे सकते। एक और बात मुझे कहनी है, आजकल विशेष जो बीमारी लग गई है वो है इनसिक्योरिटी की, और ये न सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बात है परंतु बड़ों के लिए भी बात है। तो वो जो इनसिक्योरिटी की बात आती है वो सिर्फ शब्दों से नहीं मिटाई जाती, परंतु जितना जितना पहले खुद से शुरू करते, जितना जितना हम अंदर गहराई से खुद को जानते हैं और अपने जो ओरिजिनल वैल्यूज है आत्मा के, हम उनों को जागृत करते हैं, वो भी मेडिटेशन द्वारा ही होता। और जैसे ही हम उन वैल्यूज को जागृत करते हैं तो फिर हमारे जीवन में वो आना शुरू करती है। मानो कि अहिंसा, भारत में तो हम मानते हैं कि अहिंसा परमो धर्म है, बिल्कुल, परंतु संसार को देखो बिल्कुल दूसरी तरफ चल रहा, और न सिर्फ दूसरे देशों की बात परंतु घरों में, कई मोहल्ले में, कई शहरों में, सारे भारत के अंदर हिंसा कितनी प्रकार की चलती है। परंतु पहले यदि मैं खुद को जानती हूँ और मुझे मालूम है कि मेरा आदि स्वरूप शांति है, मेरा स्वधर्म शांति है और साथ ही साथ मेरा स्वधर्म प्रेम है, तो जो क्रोध की बातें होती है, जिससे हिंसक वृत्ति होती है, वो बिल्कुल फिनिश हो जाता। वो गुण अपने अंदर है, परंतु हम उसको खुद को भूले हुए हैं और अपनी आइडेंटिटी सिर्फ फिजिकल आइडेंटिटी को हम देखते, तो वो वैल्यूज का कुछ कनेक्शन ही नहीं बनता। जिस खरी उसमें परिवर्तन आता, हम खुद अपने को आत्मा मानते हैं, आत्मा समझते हैं, तो वैल्यूज का कनेक्शन बन जाता, क्योंकि वैल्यूज ब्रेन में नहीं है, वैल्यूज आत्मा के अंदर है। तो जैसी होती तो हमारे मन में किस प्रकार के संकल्प आएंगे, वचन किस प्रकार से चलेंगे और हमारा कर्तव्य किस प्रकार से होगा, तो वो वैल्यूज का कनेक्शन यदि हम जोड़ते हैं अपने जीवन में, तो हमने देखा है कि खुद में वो विश्वास बढ़ता जाता। इनसिक्योरिटी, लैक ऑफ ट्रस्ट फॉर द सेल्फ, लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम, ये बातें तब होती जब वो जो वैल्यूज अंदर चले गई है, हम भूल गए हैं उन्हों को और हम देखते हैं कि जीवन कुछ और रास्ते पर चल रही है। एक तरह से विवेक मानता है कि हिंसा गलत है, परंतु खुद के ऊपर भी हम हैं, कैसे, गलत खाना खाना, गलत चीजें पीना, कोई भी एडिक्शंस के वश हो जाना, ये सब बातों से हमारी खुद अपनी सेल्फ एस्टीम कम होती जाती। और जिस समय हम वैल्यूज के आधार पर जीवन चलाने लगते हैं, तो आप मुझे रिस्पेक्ट दो या न दो, मैं अपनी सेल्फ एस्टीम, मैं सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी में रह सकती हूँ, तो मुझे कोई ये संकल्प नहीं होता ये मुझे देवे, नहीं, आई एम इंडिपेंडेंट, माई डिग्निटी इज इन माई ओन हैंड्स, कोई वो मेरे से छीन नहीं सकता। यदि कोई मेरे ऊपर गुस्सा करता तो ऐसा नहीं कि मेरी स्थिति पर असर हो, नहीं, उसके स्थिति पर असर हो रहा, और ऐसे भी नहीं कि देखने वाले कहेंगे हाँ वो जो कह रहे हैं वो राइट है, नहीं, हर एक को अपना विवेक है, परंतु हम उसके असर में न आए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डिग्निटी में रहें। तो यदि हम इस तरह से अपना इनसिक्योरिटी की बातें, नेगेटिविटी की बातें खत्म करते जाएंगे, उसमें भी हमारा जो प्रेजेंस है, उस प्रेजेंस का बहुत शक्तिशाली इम्पैक्ट औरों पर जरूर होगा। जैसे उस बहन जो लिखत वाली थी उसका मैंने बताया, कि जब यहाँ पर कंफ्यूजन है, नर्वसनेस है, टेंशन है, तब तक वही वाइब्रेशंस फैलते, और जिस घड़ी यहाँ शांति है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ एस्टीम है, हम वो वाइब्रेशंस औरों तक भी पहुँचाते हैं। लेट मी स्टॉप हियर, क्योंकि प्रश्न से भी बहुत कुछ फायदा हो सकता।
थैंक यू सो मच दीदी, आपने बहुत सारे एग्जाम्पल से हमें इस टॉपिक को क्लियर किया कि कैसे एक एजुकेटर का इम्पैक्ट साइलेंटली आता है। दीदी, आपने दादी जानकी के बारे में स्टार्टिंग में हमारे साथ शेयर किया, आप कोई ऐसा इंसिडेंट बताएंगे विच मेड यू फेल्ट के हाँ, मैंने दादी में ये देख लिया और अब मुझे भी अपने लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करना है।
मेरी वैसे तो बचपन से ब्रह्मा कुमारीज के साथ संबंध रहा, क्योंकि हमारी मदर और ग्रैंड मदर भी इसी मार्ग पर चलते, परंतु छोटेपन में तो ब्रह्मा कुमारीज अच्छे है, जब जब भारत में आते थे तो फ्रेंड्स की रीति से मिलते थे, बहुत प्यार का संबंध रहा। परंतु जब मैं भारत में कुछ समय के लिए आकर के रही थी, यह 1968 की बात, तो मेरी आयु उस समय 18 थी, तो मैं थोड़ा बोर हो गई थी, जस्ट बीइंग अ सोशल बटरफ्लाई, टूरिज्म आदत, ये लगता था कि ये कुछ खाली हो रहा है, आई नीड टू फिल इट। तो मैंने अपने से पूछा कि भारत में किस प्रकार की एजुकेशन मिल सकती जो मुझे बाहर में नहीं मिल सकती। तो मुझे याद आया कि ब्रह्मा कुमारीज विदेश में नहीं है, एट दैट टाइम नो सेंटर आउटसाइड इंडिया। तो जबकि मैं अभी भारत में हूँ, तो मैं कुछ दादी से सीखूं, दादी को भी बचपन से देखा था। तो दादी ने देखते ही कहा कि तुमको कुछ कहना है या मैं कुछ बोलूं। मैंने कहा दादी आप बताओ, मैं सुनने के लिए आई हूँ। तो दादी ने शुरू किया कि आजकल विवेक के ऊपर बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस है, और वो इन्फ्लुएंसेस हमको राइट डिसीजन लेने नहीं देती। विवेक के ऊपर मीडिया, फ्रेंड्स, एजुकेशन, कंपनी, ये सब बातों का इन्फ्लुएंस है। तो इस कारण से निर्णय करना कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए आदत, ये जो गहरे प्रश्न है आत्मा के अंदर, उसका जवाब नहीं मिलता, एक ग्रे एरिया बन जाती है जिसमें कुछ क्लैरिटी नहीं है। तो दादी ने जैसे कि मेरे माइंड को रीड किया, मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे ये कोई प्रश्न दादी से पूछना है, परंतु वो वाइब्रेशन से वो समझ गई, और फिर वो टॉपिक जिसकी मुझे ज़रूरत थी दादी वो बताने लगी। तो वो जो साइलेंट कम्युनिकेशन, पहले एक मिनट दादी हमेशा दृष्टि देती थी, जैसे यहाँ पर भी गीत बहुत सुंदर था, पर हम लोग योग में थे, मेडिटेशन में, और आप लोगों को मालूम है कि दृष्टि जब हम परमात्मा की याद में आपको देखते हैं उस दृष्टि से कि आप भी आत्मा परमात्मा की याद में है, तुम दोनों के बीच में परमात्मा, तो वो जो परमात्मा के वाइब्रेशंस उस दृष्टि से फैलते हैं, बहुत उसका फायदा होता। तो दादी पहले तो जो एक मिनट साइलेंस में दृष्टि दी थी, उस दृष्टि से दादी हर बात समझ गई। तो फिर वो थी मेरे जीवन की टर्निंग पॉइंट। 6 weeks लेटर मैं ब्रह्मा बाबा से फिर मिली, और बाबा ने 3 वर्ष पहले बता दिया था कि ये स्पिरिचुअल टीचर बनेंगे, परंतु हिंदी तो मुझे 10% आती थी, तो रूहानी शब्द का मतलब ही क्या है मैं नहीं समझती थी। तो कुछ तो मैंने सोचा बाबा सेइंग नाइस थिंग्स, हर एक के साथ बाबा अच्छी बातें ही करते होंगे, कोई मेरे लिए स्पेसिफिक बाबा प्रिडिक्शन कर रहे हैं ये मैंने समझा ही नहीं। परंतु 3 वर्ष के बाद जब उस समय बाबा के सामने आई, तो मैंने बाबा को कहा कि मुझे ये जीवन बनानी है और मुझे सेवा करनी है। तो बाबा ने कहा कि बाबा पहले से ही जानते थे। तो मैं 2 कहानियां मिक्स कर रही हूँ, परंतु दोनों का कनेक्शन है, क्योंकि वो जो दादी का साइलेंट दृष्टि का अनुभव था और फिर दादी ने जिस तरह से टॉपिक शुरू की और 6 weeks later I'm ready to surrender. तो बहुत शॉर्ट टाइम था जिस बीच में मैंने ये निर्णय लिया, परंतु वो दादी का इम्पैक्ट और फिर ब्रह्मा बाबा का इम्पैक्ट.
उस समय दीदी आपकी एज भी कम थी और डिसीशन भी बहुत कम टाइम में लिया, एंड नाउ इट्स अराउंड 50 years. तो इसके बीच में कभी भी आपको चैलेंजेस तो आए ही होंगे, बट यू नेवर लुक बैक. तो उसके पीछे ऐसी कौन सी आपकी धारणाएं, डिसिप्लिन्स रहे जो आपको सिर्फ आगे 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 ही लेकर के गए?
क्योंकि ये मेरी पर्सनल चॉइस थी, किसी के कहने से या किसी के इन्फ्लुएंस से नहीं था. तो मैं सवेरे जब योग में बैठती तो मैं अपने से फिर भी पूछती कि आपको क्या चाहिए, तो यही उत्तर आता कि यही जीवन चाहिए. तो इस कारण से ये जीवन को चेंज करने का तो कभी भी संकल्प नहीं आया है, परंतु हाँ चैलेंजेस आई है, पहले खुद के संस्कारों की. क्योंकि जब हम कोई भी स्पिरिचुअल मार्ग शुरू करते हैं या वैसे भी जीवन में, बहुत कम लोग हैं जो खुद को जानते हैं. कई तो जीवन की पूरी यात्रा करके भी खुद को नहीं जानते, और कईयों का भाग्य होता है कि जीवन की घटनाओं अनुसार खुद को ज़्यादा खुद की पहचान प्राप्त होती जाती. और मेरा भाग्य था कि यंग एज में ही जल्दी इस मार्ग पर आ जाने से तो जल्दी ही अपने संस्कारों की पहचान होती गई, और फिर मुझे उनको कैसे चेंज करना है उसका भी फिर रास्ता मिलता गया और दादी का संग मिलता गया. दादी 40 years विदेश में रही, तो मुझे 40 वर्ष की जो पालना मिली फ्रॉम 1974 टू 2005, 41 years करीब, तो वो जो पालना मिली वो बहुत विशेष ही मिली. तो सचमुच दादी को तो मैं 70 साल से जानती, 70 years दादी की पहचान रही, परंतु दादी का संग मिलने से बहुत कुछ प्रैक्टिकल जीवन की प्राप्ति हुई. तो ये तो भाग्य है.
बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस दीदी का रहा दादी के साथ में, और जैसी दादी जी की पर्सनैलिटी थी, आज दादी जी तो हमारे बीच में नहीं है, पर हम सभी दीदी के साथ सेम वाइब्रेशंस को फील कर पाते हैं. दीदी, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी रही और आपके टीचर स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको देते रहे स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर, पर अभी जो ये सारी ऑडियंस है हमारे, ये सभी एक ऐसे वर्ल्ड में जी रहे हैं जहां पर बहुत सारे प्रेशर्स हैं, टारगेट्स हैं, आजकल एडमिशंस के भी टारगेट्स हैं, पढ़ाना भी है, एडमिशंस भी करने हैं, बहुत सारे इवेंट्स, एक्टिविटीज, उन सब के बीच में कैसे अपना बैलेंस बना के रखें कि जो आपने बात की अभी हमारी इंटरनल स्टेट, तो उसके लिए क्या करें हम रोज?
हम अपनी अंदर की लगन जागृत होती है कि ये जो मेरा लाइफ है वो तो ठीक है, परंतु जो इंटरनल सेटिस्फैक्शन मुझे चाहिए वो कहाँ पर मिसिंग है. जब ये संकल्प आता कि मुझे इससे कुछ और ज़्यादा करना है, मुझे इससे कुछ और ज़्यादा चाहिए, तो हम खोज में आ जाते. और फिर उस समय जब वो प्राप्ति होती, हम देखते हैं कि जो हमारे अंदर प्रश्नों का हमें उत्तर मिलता जा रहा, प्रश्न आप पूछो भी नहीं परंतु उसके उत्तर मिलते जा रहे हैं, तो वो जर्नी हमारी शुरू हो जाती. और उसमें फिर मैंने देखा है कि यदि कुछ तुरंत ही प्राप्ति ऐसे होने लगती तो हम सोचते हैं कि मैं और उसको स्टडी करूं और उसका प्रैक्टिस करूं, तो फिर अपना नियम बना लेते हैं सवेरे का समय कुछ टाइम और शाम का या रात्रि का समय कुछ टाइम. तो यदि सवेरे के समय आप थोड़ा अपने लिए शांति का समय टाइम, थोड़ा जल्दी उठना पड़ता क्योंकि परिवार शुरू हुआ, कारोबार शुरू हुई, फिर तो खुद के लिए इतना समय नहीं हो पाता. परंतु वो जो इन्वेस्टमेंट होता है, स्लीप डेप्रिवेशन हम नहीं कहेंगे, परंतु जो वो इन्वेस्टमेंट होता है खुद में, तो फिर उसमें सवेरे की तैयारी ऐसे होती जैसे उस टीचर का मैंने एग्जांपल बताया कि जब वो थोड़ी लेट उठती थी तो वो प्रेपरेशन जो इंटरनल होनी चाहिए वो नहीं हो पाता था, परंतु उसने देखा कि यदि मैं टाइम देती हूँ खुद के लिए तो अंदर की जो तैयारी होती मेडिटेशन के द्वारा फिर स्पिरिचुअल स्टडी के द्वारा, उससे आत्मा को बहुत आनंद भी अनुभव होता और जो अंदर की ख्वाहिश थी, आई वॉज सर्चिंग बट आई डिडंट नो व्हाट आई वॉज लुकिंग फॉर, मालूम भी नहीं था, परंतु जैसे वो ख्वाहिश पूरी होती जाती और वो धारणा में जीवन में वो प्रैक्टिकल उसका चलता जाता, तो फिर हम यही सोचते हैं कि वो जो मुझे आनंद मिलता है सवेरे के समय वो मेरे लिए जैसे कि खुराक है, एक मुझे शक्तिशाली बनाता, तो फिर हम उसको छोड़ने नहीं चाहते हैं सवेरे का समय। और फिर रात्रि के समय अपनी ऑडिट करें कि किस तरह से दिन बीता, हमारा कहाँ तक शुद्ध संकल्प चले, कहाँ तक हमने अपने वचनों द्वारा औरों को अपलिफ्ट किया, कुछ मदद दी, कुछ उनको सहयोग दिया किसी भी प्रकार से, या कुछ मैंने कहाँ पर इम्पेशेंट होकर के रफ बोला, या कुछ मैंने ऐसे बात कही जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी, तो ये सब अपनी चेकिंग जो होती है रात्रि को। वैसे तो रात के समय भी कई बातें भूल ही जाती, परंतु उसके लिए एक दूसरा इलाज है, परंतु स्टार्टिंग में तो सवेरे शाम को इस तरह से शुरू करें तो बहुत फायदा हो सकता। और जब हम देखते हैं कि इसकी प्राप्ति हो रही है तो हर इंसान जहाँ प्राप्ति है उसको छोड़ता नहीं है, फिर सोचते हैं कि इसी में ही लगे रहें।
बहुत अच्छा दीदी ने सजेशन दिया है हम सभी को मॉर्निंग मेडिटेशन एंड इवनिंग नाइट में ऑडिट करने के लिए, सो दैट हम अपने इनर पीस को अपने साथ बनाए रखें। दीदी आजकल आउटकम बेस्ड एजुकेशन की बात बहुत ज्यादा होती है, आउटकम बेस्ड एजुकेशन के स्टूडेंट्स को जॉब मिल जाए जल्दी से, वो प्लेस हो जाए, और यहाँ ये कॉन्फ्रेंस का टॉपिक है एजुकेशन बियॉन्ड डिग्रीज। सो ऐसी कौन सी बातें हैं जो हम इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू इस कैंपस में जब हम आए हैं तो हम उनको फील करके जाएं विच आर नॉट टॉट इन एनी एजुकेशन सिस्टम?
मैंने देखा है कि मैं यूके की बात कहती हूँ और देशों में भी ये एक अपना प्रोग्राम चला था और आज तक भी चल रहा है, लिविंग वैल्यूज। यहाँ वैल्यूज एजुकेशन का कोर्स चलता है, लिटिल बिट कनेक्टेड बट सेपरेट। तो जिस जिस स्कूल में या जिस जिस कोई भी स्टेज ऑफ एजुकेशन हो, जहाँ पर वैल्यूज की बात आ जाती, न सिर्फ उनका व्यवहार आपस में बदल जाता और उनका व्यवहार टीचर्स के साथ भी बदल जाता, परंतु उनका एकेडमिक एक्सलेंस भी बढ़ जाता। ये तो कईयों ने रिसर्च किया है और कई स्कूल्स में ये प्रूफ मिला है, चाहे जूनियर स्कूल से लेकर आगे बढ़ते जाओ, जहाँ पर वैल्यूज पर एजुकेशन एजुकेटर्स ध्यान देते हैं, वो करिकुलम बने हुए हैं, तो उनों पर क्या होगा कि फिर ऐसे नहीं कि आउटकम कम हो जाती, आउटपुट इनफैक्ट इट्स इवन बेटर। परंतु जो वैल्यूज पर ध्यान देते उससे बहुत प्राप्ति होती। उसमें मैं ये समझती हूँ कि वैल्यूज में क्या होता है कि अंदर जाना होता है, तो उसमें जैसे अंदर की आइडेंटिटी की रियलाइजेशन होती जाती है, उसमें हमारी कंसंट्रेशन कैपेसिटी भी बढ़ जाती, और उसमें जब वातावरण इस प्रकार से होता है सहयोग का, ऐसे नहीं कि आई वॉन्ट टू डू बेटर देन यू, उस भावना से नहीं, आई वॉन्ट टू डू द बेस्ट फॉर माई सेल्फ। आपकी जो स्थिति है, दूसरे हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, परंतु कलैबोरेशन हो जाता है, एक दूसरे को सहयोग देने लगते हैं। तो वैल्यूज एजुकेशन में अथवा स्पिरिचुअलिटी जिस द्वारा वैल्यूज का जागृति होती, उससे आउटकम और ही अच्छा बनता, कम नहीं होता।
दीदी, आपने बहुत सारे फेथ्स के लोगों को डील किया है, उनको ये स्पिरिचुअल एजुकेशन आपने दी है, तो कोई एक एक्सपीरियंस उससे रिलेटेड, जिससे कि वो लोग दूसरे फेथ के थे एंड हाउ दे गेट इन्फ्लुएंस्ड और गेट बेनिफिटेड बाय दिस स्पिरिचुअलिटी।
बहुत सारे लोग आजकल और खास करके यंग जनरेशन बहुत इनसिक्योर फील करते हैं, और मैं संसार की हालत देखती हूँ कि 60s में कोई ऐसी बात नहीं लगती थी कि एवरीथिंग कैन कलैप्स एनी मोमेंट। आजकल एनवायरनमेंट को देखो, पॉलिटिक्स को देखो, इकोनॉमिक्स को देखो, फैमिली लाइफ को देखो, रिलीजन को देखो, सब ऐसे हलचल में है जो बिल्कुल कोई भी समय क्या होगा कुछ पता नहीं। Each of these fields, the insecurity का कारण समझ सकते हैं। विदेश में तो जो नौजवान है, आप लोगों ने ये तो कुछ कुछ समाचार सुना होगा, देखा होगा, परंतु इट्स अ रियलिटी। कई स्कूल के बच्चे या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स या तो डिप्रेशन में आ जाते हैं, या तो बिल्कुल जैसे कि फीलिंगलेस बन जाते हैं कि पता नहीं हम अभी स्टडी कर रहे हैं, अभी एनवायरनमेंट की बातें जो चल रही है कहाँ तक आगे इस प्रकार से बातें चलेंगी। जब हम मेरा क्लाइमेट चेंज का विशेष टॉपिक रहा है फ्रॉम 2009, और हम लोग हमेशा जब वहाँ कॉप में जाते हैं तो जो क्लाइमेट चेंज का कॉन्फ्रेंस हर साल होता, तो उसमें हम संगठन एक दो बारी रिसेप्शन करते हैं, जिसमें जो अपने कॉन्टैक्ट्स बने हैं, फ्रेंड्स बने हैं और पुराने फ्रेंड्स, उन्हों को अपने पास बुलाते हैं वन इवनिंग के लिए। तो उसमें ये लास्ट फ्यू इयर्स मैंने देखा कि नौजवान इतने कंफ्यूज हो गए हैं कि गवर्नमेंट्स ध्यान नहीं देती है इस टॉपिक को, एटलीस्ट अंटिल नाउ। अभी तेल की प्राइसेस 3 गुना 4 गुना होने वाली है, तो शायद अभी कुछ ध्यान देने लगेंगे, रिन्यूएबल एनर्जीज को ज़्यादा ध्यान देंगे, लेट्स सी। परंतु या तो डिप्रेशन या तो जस्ट वेरी एंग्शियस, वेरी फियरफुल, तो ये टोटल कंडीशन जो है लोगों की, वो जो भी आते हैं उनके अंदर हम देखते हैं पर्सनल हिसाब से। तो जब उनको स्पिरिचुअलिटी की जानकारी मिलती, उनकी जो वृत्ति होती वो बदल जाती, उनका दृष्टिकोण बदल जाता। क्यों? आत्मा अनादि अविनाशी, परमात्मा अनादि अविनाशी, प्रकृति अनादि अविनाशी, तो उसमें परिवर्तन कांस्टेंट है ही, परंतु हमको क्या करना है इस समय, हमें अपनी और आगे के लिए तैयारी करनी है। एग्जाम्पल, आज हम बहुत हिंसक वृत्ति से प्रकृति के ऊपर हम लोगों ने संबंध रखा है, उसको कट करते जाओ, लेते जाओ लेते जाओ, उसका देना क्या है, और ये हम केमिकल्स, पॉइजन, टॉक्सिक सब्सटेंसेस अर्थ में डालते जा रहे हैं, तो हमने उसको कुछ मदद नहीं की, और ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको खत्म कर दिया। तो जब हमें ये पता चलता कि इसके भविष्य क्या होगा, और जो इमीडिएट फ्यूचर है उससे भी और आगे क्या होगा, हम मानते हैं कि जिस घड़ी रात्रि होती सदा रात नहीं चलती है, दिन आरंभ होता। तो जब आज हम देखते हैं अंधेरा है, कलयुग है, घोर कलयुग, परंतु उसके बाद सतयुग अवश्य ही आएगा। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो वन, जिस घड़ी समय आता है परिवर्तन का, सूर्य उदय होने का, कोई उसको रोक नहीं सकता, वो अपना काम जरूर करेगा। तो सत्युग भी अवश्य आने वाला है, परंतु मुझे अपने अंदर तैयारी करनी है वहाँ के लायक बनने की। तो जब इस प्रकार से हम उन्हों से बातें करते हैं, उनको समझाते हैं कि ऐसे नहीं कि वे हेल्पलेस, क्योंकि ये सब बातें देख करके कईयों को हेल्पलेसनेस फील होती कि क्या करें, संसार ही ऐसा है, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो वो जो अपने में कॉन्फिडेंस नहीं होता, सिक्योरिटी नहीं होती और हेल्पलेसनेस आ जाती, यू आर पैरालाइज्ड, कुछ पता ही नहीं चलता अभी क्या करें। तो फिर ऐसे समय पर जब स्पिरिचुअलिटी की बातें सुनने को मिलती, देखने को मिलती कि प्रैक्टिकल यहाँ कलयुग में होते भी आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बना के चला सकते, तो उनको एक नई उमंग आती। और न सिर्फ जो सेंटर पर रहने वाले हैं उन्हों की जीवन, परंतु मैं फिगर्स आपको बताऊं, भारत में अबाउट 19,000 मेजॉरिटी सिस्टर्स, परंतु कई ब्रदर्स भी डेडिकेटेड लाइफ में हैं जो सेंटर संभालते हैं, चलाते हैं। बाकी तो 1 मिलियन जो एडहेरेंस है इस बात को फॉलो करने वाले, दैट्स 1 मिलियन। तो आप परसेंटेज खुद ही देखो कि डेडिकेटेड का कुछ स्मॉल नंबर है, बाकी तो है जो घर में रहते हैं, अपनी जॉब करते हैं। यहाँ भी मैं नाम नहीं ले रही हूँ, परंतु कई हैं जो ऐसे आपको मिलेंगे जो शायद आपके फैकल्टी मेंबर्स भी हैं, तो वो आपको अपने जीवन का बता सकते हैं कि ज्ञान से अपने जीवन को यहाँ इसी संसार में रहते कैसे उन्होंने अपने जीवन को कमल पुष्प समान बना के रखा है। आपने कभी कमल फूल को हाथ लगा के देखा है? रोज पेटल बहुत सॉफ्ट होता, कमल का पेटल इट्स सॉफ्ट बट इट्स हार्ड, उस कुछ वैक्सी सब्सटेंस उसके नेचुरल रीति से होती। तो पानी उस पर आता तो पानी टिकता नहीं है, उसका रोल हो जाता, बस नीचे चला आता। और कमल के फूल मिलते कहाँ है? स्टैग्नेंट वाटर, जहाँ फ्लोइंग वाटर है वहाँ नहीं मिलते, परंतु स्टैग्नेंट वाटर। तो वहाँ पर जो पानी उसके ऊपर आता वो कोई स्वच्छ पानी नहीं होता, वो मैला पानी होता, परंतु वो अपना उसके ऊपर रहता और इतना सुंदर अपना सुंदरता सबको फायदा देता। और उसके हर प्रकार के जो भी है, उसके रूट्स है, उसके सीड्स है, सब कुछ यूजफुल होते हैं। तो अपने जीवन को यूजफुल भी बनाना है, परंतु साथ साथ रहते हैं कलयुग में, परंतु अपने जीवन को श्रेष्ठ बना करके रख सकते हैं स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से।
थैंक यू सो मच दीदी, आपने बहुत अच्छे एग्जांपल से हमें प्रैक्टिकल वेज टू इम्प्लीमेंट दिस स्पिरिचुअल नॉलेज इन लाइफ शेयर किया। दीदी बस लास्ट एक, सभी लोग बहुत दूर दूर से आए हैं भारत के अलग अलग कोनों से, तो आपकी कुछ ब्लेसिंग सभी के लिए।
सबसे नोबल प्रोफेशन है एजुकेशन, क्योंकि सचमुच जीवन बनाने का रास्ता एजुकेशन होता। घर का वातावरण का भी बहुत विशेष फायदा होता, परंतु ज्यादा क्योंकि 8 घंटा या उससे भी अधिक एजुकेटर्स के साथ बच्चों का टाइम बीतता। पेरेंट्स के साथ हर रोज 8 घंटे नहीं बीतते, उसमें तो घर पे खाना होता है, सोना होता है आदाद, परंतु जो एजुकेटर्स हैं उनकी बहुत नोबल प्रोफेशन है, क्योंकि वो छोटे छोटे यंग बड्स को बिल्कुल अपने फ्लावरिंग स्टेज तक, ब्लूमिंग स्टेज तक ला सकते हैं। उनके अंदर जो आप बीज डाल रहे हैं, सत्यता का, प्यार का, रिस्पेक्ट का, अहिंसा का, पवित्रता का, शांति का, तो वो जो बीज आपने डाला वो कभी वो भूलता नहीं है। हर एक को आज तक भी अपने बचपन के दिन जरूर याद होंगे कि किस टीचर से क्या प्राप्ति हुई थी। तो आप जब ये सोचेंगे कि आपके हाथ में नया विश्व है, आपके हाथ में आगे की जेनरेशन है, तो आपको अपनी खुद के वैल्यू का पता चलेगा और आप फिर उस कॉन्शियसनेस से जितना खुद में उस परमात्मा के द्वारा जो प्राप्ति होती है अपने में भरते जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली उनको लेसन जो भी टॉपिक हो, साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, कुछ भी हो, परंतु आपके द्वारा जो वो वाइब्रेशंस और फीलिंग्स लेंगे उनको बहुत अच्छी जीवन बनती जाएंगी।
थैंक यू सो मच दीदी, हम सभी दीदी का करतल ध्वनि से धन्यवाद करते हैं कि दीदी ने अपने इतने व्यस्त शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला और दीदी अभी ही आज ही दीदी विदेश के लिए प्रस्थान करेंगे, तो ये तो वास्तव में हम सबका बहुत स्पेशल फॉर्चून है कि दीदी आप हमारे बीच में आए, हमारे प्रश्नों का भी समाधान किया और एक ग्लोबल लेवल पर आपने हमें एनलाइटन किया। थैंक यू सो मच दीदी।